ॐ शांति। आज सोमवार है, शुभावा का दिन। शुभावा हमें सोम रस पिलाते हैं। सोम रस माना उसमें सभी प्रकार के रस आ जाते हैं, तो बाबा भी रोज मुरली में भिन्न भिन्न बातों से हमें रस पिलाते हैं। आज है पूरी मुरली धारणा के ऊपर। पहले तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम्हें इतनी बड़ी लॉटरी मिली है, किसी को डॉक्टरी पढ़ने के बाद, बैरिस्ट्री पढ़ने के बाद अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाए तो समझते हैं ना, मैं लकी हूं, मेरी लॉटरी लग गई, मुझे अच्छी अच्छी जगह जॉब मिली, तो तुम्हें कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। इसलिए पहले अपने आप की चेकिंग करनी है, तो तीन चार बातों की बाबा ने चेकिंग भी बताई है और फिर कर्म फिलॉसफी भी समझाई है। इन सभी के लिए बाबा ने कहा, चेकिंग करने के बाद इसको परिवर्तन करने के लिए एक ही विधि है, आत्माभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझना। तो आज सारी मुरली में बाबा ने अनेक अनेक बार आत्मा 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 शब्द को रियलाइज कराया है कि तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, और आत्माभिमानी नहीं बनते हैं तो क्या क्या होता है ये भी बताया है। तो आज अभी सुनते हैं बाबा के शब्दों में, बाबा की अमृतवाणी। आज है 8 सितंबर 2025। मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पद्म पति बनते हो? पद्मा पद्म पति बनने के लिए कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है, सबसे बड़ी बात यह है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देखो नहीं देखो, मैं आत्मा हूं ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। बहुत ऊंचा लक्ष्य है, बहुत ऊंची प्राप्ति है, लेकिन इसकी विधि एक ही है। जो जिस दिन से हम आते हैं, कोर्स करते हैं, उस दिन से पहला पाठ हमें यही पढ़ाया जाता है। तो आज का गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? ये गारंटी कौन दे सकता है कि धीरज धरो तुम्हारे सुख के दिन आएंगे? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है किससे? परम पिता परमात्मा से। ये आत्मा का ज्ञान कौन देगा? परमात्मा के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। देहधारी जो भी हैं, सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी दे नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उसके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। जो बाहर दुनिया वाले त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, उसमें तीन शेर दिखाते हैं, लेकिन उसमें शिव बाबा तो होते नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? वो ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कराएगा कौन, ये नहीं पता। ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा भी इस संगम युग पर हमारे पिता बने हैं, फिर नहीं होंगे। पूरे कल्प में वो हमारे पिता नहीं होंगे। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। संगम पर हमें तीन पिता हैं, बाकी तो दुनिया में दो ही हैं। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? जब बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, बना दिया, फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं रहती। कोई याद करता ही नहीं है। वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना, वो लक होता है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसके बाद अच्छी रैंक आती है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह मिलती है, हर एक में लक काम करता है। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। ज्ञान तो बाद में भी याद रहेगा, यहां से जाएंगे माया में जाएंगे तो भी यही बोलते रहेंगे ना, हमारा ड्रामा में पार्टी ये था, हमारा इसके साथ हिसाब किताब था। ये ज्ञान की बातें तो याद रहती है लेकिन बाबा की याद नहीं रहती है। बाप कहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो, चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। बाबा ने ये भी फिर एक और बच्चों को इशारा दिया है, यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं उनकी राय से करो, जो भी निमित्त हैं बड़े हैं उनको पूछ कर हर कार्य करो, मनमत नहीं करनी है। ये बाबा ने कहा कि जो निमित्त हैं संभाल करने वाले बैठे हैं उनको पूछ कर करो। कहते भी हैं जब हम आए ब्राह्मण बने समर्पित हुए या ट्रायल में भी आए तो क्या वादा करवाया, तो बाबा वादा याद करा रहे हैं, क्या प्रॉमिस किया, जो खिलाओ जहां बिठाओ, जब ये वादा करते हैं तो क्या होता है। बाबा कहते हैं, कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है। जब बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है तो और आशाएं नहीं रहती है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी, यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है, यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, बड़े बड़े पाप तो यहां आकर कोई नहीं करेगा लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, इसलिए बाबा कहते हैं ये भी पाप है, माया की प्रवेशता है। जब माया प्रवेश करती है तब तो कोई ना कोई मिस्टेक होती है। ना योग में रह सकते ना ज्ञान की धारणा कर सकते, जब माया की प्रवेशता होती है तो ना योग में रहेंगे ना ज्ञान की धारणा कर सकेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे। बाबा कहते हैं ना सबको बाबा का परिचय दो, अंधों की लाठी बनो, अगर हम अंधों की लाठी नहीं बनते तो क्या ठहरे। बाबा कहते हैं अंधे ही ठहरे, अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वो है रावण राज्य में। और अभी तो हम धृतराष्ट्र के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अभी हम हैं संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। जब राम राज्य में सुख पाएंगे तो अभी कैसे अंधे हो सकते हैं, अभी तो हम एकदम किनारे पर आ गए हैं। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। इसलिए पहला लेसन आत्मा का है, फिर सेकंड लेसन परमात्मा का है। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, कहते ना वैश्या योनि वल वल उतरे, तो बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो सीधा बाबा की गोद में जाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। जाएंगे तो सही लेकिन सजाएं खाकर जाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, दिन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बैग बैगेज पैक कर रहे हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिसको ये जो निश्चय बाबा दिला रहे हैं कि विनाश भी जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है, ये निश्चय नहीं होगा तो क्या होगा। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहां से मर कर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। ये अलौकिक जन्म लिया था फिर एक जन्म पीछे चले जाते हैं, विनश्यन्ति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं, पहले पहले तो समझाओ फिर बाबा उस पॉइंट पर आए। तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। लॉटरी गुम भी होती है, बल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी होते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसा नहीं कि चलो सतयुग में तो जाएंगे ही, वहां भी तो सब सुखी तो होते हैं, वहां सब दैवी तो होते हैं। नौकर भी बन गए, प्रजा भी बन गए तो क्या हुआ, सतयुग में तो जाएंगे वहां भी सुख है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हें पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का ही करना है। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो, हमारा राजयोग है ना, प्रजा योग तो है नहीं, तो बाबा कहते राजा बनने आए हो। ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। बाबा के घर में अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। कहां मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, वो कहीं कहीं गीता पाठशालाएं होती है तो भाई भी क्लास चलाते हैं। तो बाबा कहते कहीं मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। जाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। जब कोई मेला करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं तो लाखों करोड़ों देखते हैं, फिर जब शिविर रखते कोर्स रखते तो उससे और कम होते हैं। फिर रेगुलर कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। ये भी बीमारी है ना, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है, प्लस और माइनस होता है ना रोज का, घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, ये तो बाद की बात है, ये तो बेनिफिट है बाद का। लेकिन पहले किस लिए बुलाया, आकर हमको पवित्र बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। आज बाबा ने कहा मुक्ति धाम भी पावन धाम है, तो जीवन मुक्ति धाम भी पावन धाम है। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ पाएंगे। यहां तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है, बाबा कहते मधुबन में आते हैं तो यहां कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको बताओ कि पहले पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर क्या होगा, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये दो स्टेज है, पहले तो याद से राजा बनना है और चक्रवर्ती राजा भी बनना है, उससे पहले विकर्म विनाश करने हैं। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत ग्रस्ती भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आय हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना, बाबा ये पक्का करा रहे हैं। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उसको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब दिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है, बाबा को लेटर भी लिखते हैं और भी आपस में बात करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आय को निकालने की, ये बहुत कड़ी है, मुश्किल अनुभव करते हैं, घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं, अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है, कहते ना सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी, बाबा कहते ये तो एक कहानी है, तुम्हें निकालना नहीं है लेकिन तुम्हें इसी को ही प्योर बनाना है। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी, अभी तो वो बात है नहीं, ये आंखें तो सबको है परंतु क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये नहीं हो सकता, उस साधु संत भी यही कहेंगे, गृहस्थी भी यही कहेंगे, लेकिन बाबा ने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के दिखाया। बाप कहते हैं हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। जब किसी को पता है कि इसमें बहुत आमदनी है तो मुश्किल कार्य भी कर लेते हैं ना, कितना भी साहस का काम उठा लेते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें भी आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं, इतना भाग्य है, इतनी कमाई है जिसकी कोई गिनती नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती दे देते हैं, किसी को भी बाबा क्या कहेंगे, ये पद्मा पदम पति है, पद्मावती है, तो अनगिनत पदम पति बनते हो, तो फिर बाबा नाम भी ऐसा देते हैं, वहां गिनती होती ही नहीं है। गिनती कब से शुरू हुई, सत्युग में तो गिनती होती ही नहीं है 1 2 3 4, क्योंकि वहां हिसाब ही नहीं है, ये गिनती कब से शुरू हुई। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वो द्वापर युग से हुआ होगा, वहां तो सतयुग में सोने चांदी की मोहरे काम में आती है, आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी, वो जो सिक्के होते थे उस पर राम सीता का चित्र बना हुआ होता था, बाकी सूर्यवंशी राजाए की कभी नहीं देखी है, ऐसा कोई करंसी नहीं देखी है जिसके ऊपर श्री कृष्ण का फोटो हो या लक्ष्मी नारायण का कोई चिन्ह हो, चंद्रवंशी की ही देखते आए, पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है, ये तांबे के सिक्के आदि द्वापर युग से निकले। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो अभी बाबा इतना सब बताया, सतयुग में सिक्के नहीं होते हैं, सोने चांदी के होते हैं, करंसी बाद में निकली है, ये सब बातें बता के बाबा ने सोचा बच्चे इसी चिंतन में ना लग जाएं, उसी का सोच विचार करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो तो चलेगी ही, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं उसको अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं, कोई बूढ़ा मरेगा तो बाबा कहेंगे वहां कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी कि जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहां पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा जट कहेंगे भल करो। बाबा को ये तो मना नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। लॉटरी कब मिलेगी? जब अच्छी सेवा करेंगे। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो क्या इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, क्या होगा? बाबा कहते तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहां तो हरेक अपने कर्म अनुसार ही फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कहां कहां भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। अच्छा कब लगेगा ज्ञान? जब पूर्व में बहुत भक्ति की होगी। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे, या तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे, तो समझ जाएंगे कि इसका इंटरेस्ट नहीं है। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है वो यह समझते नहीं है। सेवा नहीं करते माना खुद भी समझे नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद्मी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर, साधारण प्रजा, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो, बाहर वाले थोड़ी करेंगे, उनको पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो भी इसी दुनिया के लिए, माना अभी फल मिल जाता है। ये तो कॉमन बात है, वो जो दान पुण्य करते हैं ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। हम तो 21 जन्म के लिए अपना जमा करते हैं, तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, पहले क्या चाहिए, योगी आत्मा चाहिए, ज्ञानी चाहिए। बाबा कहते दोनों नंबर 1 चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए, क्यों चाहिए ज्ञानी? भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बाबा ने दोनों के बेनिफिट्स बताए, ज्ञानी भी बनना है उससे भी बेनिफिट है, योगी भी बनना है वो भी जरूरी है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? यहां तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई है और कोई बात यहाँ नहीं है, तो फिर बाकी सेवा में लगना है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक, ये अमर कथा भी है तो तीजरी की कथा भी है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। बाबा कुमार कुमारियों को तीखा जाना चाहिए बता के तैयार भी करते हैं, टॉपिक्स भी देते हैं किस किस टॉपिक्स पर तैयार होना है। मुख्य बात ही यह है, बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करना, ये मेन बात है। भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहां आए हैं किस लिए? पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर क्या होगा? तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने आप तो नहीं होगी, बनानी पड़ेगी। अभी से उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बाबा ने कहा है आगे चलकर तुम्हारी अवस्था अच्छी बन जाएगी, तो क्या आया बनी जाएगी? बाबा कहते नहीं, बनानी पड़ेगी। बाप किसम किसम से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। ये चलन को देखना, चेक करना, चार्ट रखना, ये सब है अपने ऊपर रहम करना। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, फिर बाबा ने वो हम जब आए तब की प्रॉमिस याद दिलाई फिर से, गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग ये अक्षर अच्छा है। कोई भी एग्जीबिशन होती थी या कोई भी बनता है म्यूजियम आदि, तो बाबा ये लिखवाते थे, गेटवे टू पैराडाइज या गेटवे टू स्वर्ग। ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, बाबा ने लास्ट में अंडरलाइन करवा दिया, अपनी प्रॉमिस याद दिलवा दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा की सारी मुरली की बातें दो पॉइंट्स में। पहला, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़, ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ और कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया को भी और प्रकृति को भी, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव, उसका क्लेरिफिकेशन है। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। कितनी बड़ी बात है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार। ऐसा होगा तो एक संकल्प भी अधीन नहीं होगा। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारा इस महीने का टॉपिक है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। कोई भी धागा हो या कोई भी चीज हो, वो बार बार टूटती रहेगी तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगी। उसको बार बार रिपेयर करते रहेंगे तो कमजोर रहोगी। अच्छा, ओम शांति।